ओम शांति। बाबा, मुरली और मधुबन, ये तीन ब्राह्मणों के क्या है? रत्न है। मधुबन में तो बिना ज्ञान के भी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जब तक ज्ञान समझ में नहीं आता तो उतना उनको महत्व नहीं होता है। कल भी बाबा ने मुरली में कहा, मधुबन सोन्नति का स्थान है। तो जब भी हम इस धरा पर आते हैं, इस धरा पर आने से हमारे जो स्वभाव का बदलाव, वृत्तियों का बदलाव, संस्कारों का बदलाव बहुत फास्ट गति से होता है, अगर अटेंशन रखेंगे तो। अदरवाइज पतन भी हो सकता है। जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी हमारी वृत्ति होगी। लास्ट संडे की मुरली बाबा ने कहा, यथार्थ सोन्नति का चश्मा वो हमने कैसे पहना हुआ है, कौन सी हमारी दृष्टि है, कैसा हमारा एटीट्यूड है, कैसे हमारे विचार हैं, कैसा हमारा व्यवहार है, कैसी हमारी चलन है, वो बदलाव हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। बाबा भी हमारे ऊपर हाथ रख दे तो भी बदलाव नहीं होगा, वो जो कहेगा वो करना पड़ेगा। नहीं तो कई दफा भक्ति की परंपराएं भी ज्ञान में चलती रहती हैं, दृष्टि दे दो, है ना, कुछ न कुछ अपेक्षा रहती हैं। जैसे आज का स्लोगन था ना, कौन सा स्लोगन था, खुशी के खजाने से संपन्न कौन नहीं हो सकता जो मांगता है। तो बाबा ने जन्मते हम सबको अपनी सारी प्रॉपर्टी के हकदार बना दिया, वारिस बना दिया, लेकिन सारा खेल दो शब्दों पर ही आधारित है, स्मृति और विस्मृति। जब जब हम स्मृति में रहते हैं तो हमारी स्थिति समर्थ रहती है, शक्तिशाली रहती है, खुशी वाली रहती है, हल्की रहती है, उड़ते रहते हैं, मौज में रहते हैं। लेकिन जैसे विस्मृत हुए तो तब तो बात ही मत पूछो, उसके तो हम सब अनुभवी हैं। बाबा ने कहा ना, मुरझाया हुआ चेहरा अच्छा लगता है, मुस्कुराता हुआ, क्योंकि ये ज्ञान, सारे ज्ञान का सार क्या है, खुशी। हम इतना पुरुषार्थ किस लिए करते हैं, क्या जरूरत है करने की, किस लिए करते हैं, खुशी के लिए। तो ये खुशी का स्रोत है, हमारे पुरुषार्थ का जो सार है, निचोड़ है, वो हमारे चेहरे पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा, संगम का समय है ये, क्या करो इसको, ये सबसे श्रेष्ठ खजाना है ये। तो ऐसे समय पर अपने चेहरे से भरपूरता की झलक दिखलाओ। भगवान हमको इतने खजाने बांटे जा रहा है। यदि हमारे जीवन में उस अनुपात से परिवर्तन नहीं हो रहा है, बदलाव नहीं हो रहा है, तो अंदर में बड़ा दुख होता है, उदासी रहती है ना। जैसे मुरली तो सुनते हैं हम, जैसे कल भी सुनी है, कल बाबा ने कहा, जो बेंजी ने रिपीट किया, बाप ने कहा और बच्चों ने किया, लेकिन कहां तक हम करते हैं। मिलन तो मनाया हमने, खुशी खुशी मना लिया, लेकिन असली मिलन तो मिलने के बाद शुरू होता है, जब बाबा चले जाते हैं उसके बाद शुरू होता है। कि जो वो देखे गया है उसको हम कितना दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, अपने संस्कारों में समा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। पुरुषार्थ तो वहां से चालू होता है। क्लास सुनना पुरुषार्थ नहीं है, क्लास सुनने के बाद उसको अप्लाई करना वो पुरुषार्थ है। तो बहुत सारी बाबा ने मुरली में कल बातें बताई है, चर्चा करेंगे हम सभी। क्योंकि बाबा ने कहा अपने आप पर तर्स करो, आज की मूल्य में था। बाप तुम बच्चों पर तर्स करते हैं, क्यों क्यों करते हैं तर्स? पापों का बोझ बहुत है, सिर पर पापों का बोझ बहुत है और मौत सामने खड़ा है, जमघटों की फांसी लगने वाली है, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। अगर हम कोई स्मृति में नहीं रहेगा तो बदलाव कैसे आएगा? वो तर्स कहां, वहीं का वहीं रह जाएगा, वो कागज तक ही सीमित रह जाता है, हमारे जीवन में नहीं आता। उसको अंगीकार करने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए कुछ तो अटेंशन रखना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने कहा संसार में बहुत बहुत क्या बढ़ने वाला है, आजकल के हालातों अनुसार टेंशन बहुत बढ़ने वाला है। इसलिए आप बच्चे क्या करो, सेवा की तैयारी करो, वो सेवा बहुत बढ़ने वाली है और बढ़ी रहा टेंशन। सब इसी तरह इस बात से तो अच्छी तरह परिचित हैं कि जिस दौर से संसार गुजरा है, जिस मोड़ पर संसार खड़ा है, उनको देखकर तो हम सभी समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों से आत्माएं गुजर रही हैं, उनमें शक्ति नहीं है। वो तो उनमें शक्ति भरने के लिए हमको पहले से बहुत बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। जो बाबा ने कहा आपको देखते उनके दुख दर्द दूर हो जाएं, वो खुशी में आ जाएं, तो हमें कितना भरपूर होना पड़ेगा, इक्वल टू बाप समान। बताया ना टीचर बहन से, टीचर बहनों से मुलाकात, क्या कहा बाप ने टीचर बहनों को? टीचर्स था फीचर से फ्यूचर, और टीचर्स बाप समान ड्यूटी पर हैं। तो बाप टाइम वेस्ट करता है, तो हम सभी तो टीचर ही है ना, तो हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं, कितना सफल कर रहे हैं? हमारे संकल्प जो बहुत बड़ी ऊर्जा है, शक्ति है, एक एक संकल्प हमारे भाग्य का निर्माण करता है। वो संकल्प हमारे कहाँ जा रहे हैं? वो संकल्पों की एनर्जी हमारे पास, उसका हम संरक्षण कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं? कौन कौन से संकल्प हमारे बुद्धि रूपी पात्र में है? आज बताया शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है, परम पवित्र। बाबा ने कहा ना आज तुम बच्चे अभी पवित्र आत्माएं बनते हो, संपूर्ण पवित्र, निर्विकारी, विकारी संसार से तुम निकल चुके। तो क्या हमारा वो बुद्धि रूपी पात्र उतना सोने जैसा बन रहा है जो ज्ञान रतन ठहर सके? इसके लिए विदेशियों से मुलाकात, बाबा ने कहा कि रोज क्या करो, सोते समय जो सुना उसको इमर्ज करो, और फिर क्या करो उसके बाद? हाँ, रात को सोते समय इमर्ज करो, फिर स्वप्न में भी दोहराते रहो, नींद में भी दोहराते रहो, फिर सुबह सुबह याद करो। और लंबे समय से हमने देखा है अगर हम ज्ञान चर्चा में लिप्त रहते हैं, अच्छा मनन चिंतन करते हैं, कुछ लिखते रहते हैं, सेवा में बिजी रहते हैं, किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, तो सपने भी वैसे आते हैं। और दिन में अगर गपशप मार रहे हैं, कुछ पिकनिक की योजनाएं बना रहे हैं, कई तरह के अपने को बिजी रखने के प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसका प्रभाव तो हमारी नींद पर पड़ता है। लंबे समय तक रात को हमको नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है, इसलिए रात को एकत्रित नहीं होता मन। रात को वो संकल्पों के टुकड़े टुकड़े फिर बिखरते हैं, कभी मन उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, पकड़ में नहीं आता है। नींद कब आती है? जब मन स्थिर होता है। तो मन की स्थिरता कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? मन मना भव से। तो युक्तियां तो खुद को हमको निकालनी पड़ेंगी। आज बाबा ने कहा ना अच्छा बिजनेसमैन कौन है? तुम हो बड़े से बड़े बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो अच्छा है जो अपने को बिजी करना जानता है, लेकिन कहां बिजी करते हैं ये हमको देखना है, है ना? जो संसार में बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसे थोड़े इतनी उन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, टॉप 10 में आ गए, टॉप 5 में आ गए, कुछ तो किया ना। तो बाबा तो हमको संबोधित करते हैं, तुम तो संसार के सबसे बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हारा एक एक संकल्प, एक एक सेकंड, इतना अमूल्यवान है। जो बच्चे अटेंशन रखते हैं, बिजी रहते हैं, वो सदा भरपूर रहते हैं, पद्मा पद्मपति वो बनते हैं। तो करना तो हमको खुद को ही पड़ेगा। तो मुरली जो है ना, वो हमारा सुहास है, लेकिन इस पर थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि वहां बुद्धि स्थिर करने में बहुत मेहनत तो लगती है, बिना मेहनत होगा कुछ नहीं है, क्योंकि बुद्धि को जो दूसरी आदतें पड़ी हैं, मन बुद्धि वहां वहां खींच के बाहर चला जाएगा। कुछ देखने की आदतें हैं, कुछ सुनने की आदतें हैं, कुछ सुनाने की आदतें हैं, बीती बातों को अगर हम सारे दिन का विश्लेषण करें तो अधिकतर तो हमारे वही संकल्प होते हैं जिनकी जीवन में आवश्यकता ही नहीं है। वही संकल्प हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं, एक्स्ट्रा सोचते रहते हैं, ज्यादा सोचने की आदत, ये भी मन को अस्थिर कर देती है, मन को भटकाती है। तो मुरली एक ऐसी चीज है जो हमारे मन को स्थिर कर देती है, एकाग्र कर देती है, खुशी से भरपूर कर देती है। जीवन में खुशी कब आती है? जब हम जो हमने लक्ष्य रखा है उस पर अग्रसर रहते हैं तो हमको खुशी मिलेगी। अगर हमें असफलता भी मिल रही है लेकिन फिर भी खुशी गायब नहीं होगी, क्योंकि हमारी यात्रा तो कायम है, चल रहे हैं हम उस पर। संसार में कितने ऐसे आविष्कारक हुए हैं जिन्होंने कितना प्रयास किया, कितने वर्षों वर्ष लगा दिए, असफलता मिली असफलता मिली, लेकिन कोशिश उनकी कभी भी उन्होंने कोशिश से हटे नहीं, पांव पीछे नहीं हटाए, लगे रहे। तो हम तो पूरे संसार को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी बाबा ने हम बच्चों पर रखी है। भगवान ने हमको चयन किया है तो उसके चुने हुए में कुछ कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई गलती हो सकती है, लेकिन हम अपने आप को गलत सिद्ध करते रहते हैं। बाबा जो भी टाइटल देते हैं वो स्वीकार कहां करते हैं, वो केवल वहां तक ही सीमित रहता है, ऊपर ही हमारे जो सब कॉन्शियस माइंड में नहीं जाता है वो, क्योंकि उस पर हमने गहराई से चिंतन नहीं किया है, देखा नहीं है। संस्कारों को बदलने का हमने हल्का हल्का प्रयास किया है, बिना साधना के संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं, बार बार उसका अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करना क्यों? बाबा कहते बार बार ड्रिल करो, क्या जरूरत है ड्रिल करने की, ऐसे थोड़ा कह दिया उसने, कुछ तो है ना उसमें गणित, कुछ मैथमेटिक्स तो छिपा हुआ पीछे है ना। संसार में भी देखते हैं, सबने रामायण महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी, राम सीता लक्ष्मण जी का रोल था ना। कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी या एक छोटा सा क्लिप आया था, तो राम जी किसी जो राम अरुण गोविल कहीं दूसरी जगह वो फिल्म की करने के लिए थे, शूटिंग करने गए थे, तो कहीं स्टेज के पीछे बैठ के सिगरेट फूंक रहे थे, बहुत पहले की बात है, आया था ना कहीं। हाँ, तो जो साउथ वाला भाई था उनके पर्दे के पीछे उन्होंने उसको देख लिया, तो उन्होंने साउथ की भाषा में अपनी भाषा में उसको खूब बोला। अब उनको तो समझ में नहीं आया, लेकिन उनको इतना समझ में आया कि इन्होंने गालियां दी है मुझे। तो फिर बाद में दूसरे भाई ने आके बताया कि आपको तो हम राम मानते हैं और सिगरेट फूंक रहे इधर बैठ के, तो उनको मन में लग गया, तब से सिगरेट छूट गया। माना संसार उनको कितनी ऊंची नजरों से देख रहा है और वो क्या कर रहा है। तो एक संसार के जिसको भगवान का भी परिचय नहीं है, एक छोटी सी बात इतना मन में धक्का दे दे। हमें तो रोज भगवान कहते हैं तुम मीठे बच्चे हो, मीठे बच्चे हो, मीठे बच्चे हो, लेकिन वो मिठास आती नहीं है। नहीं, मिठास तो आती है, सब मीठे हैं आप, बहुत मीठे हैं सभी। तो सोमान का अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। कोई भी सम्मान लेगा उस पर चिंतन करना, लंबे समय तक उसको खींचना है, क्योंकि बिना ज्ञान के योग करेंगे ना भारी लगेगा, नींद आएगी, रिफ्रेश नहीं होंगे वो। ज्ञान से बुद्धि को भरपूर करना है, ज्ञान एक रोशनी की तरह काम करता है। योग तो यात्रा कहा जाता है, बिना रोशनी के यात्रा करेंगे तो अंधकार आएगा, संकल्प नहीं आएंगे। जब भी हम किसी यात्रा पर जाते हैं अंधकार में क्या होता है, रोशनी तो करनी पड़ती ना, अगर बिना रोशनी यात्रा करेंगे तो भटकेंगे, कुछ भी जानवर भी आ सकता है। इसी तरह से बिना ज्ञान के अगर योग में हम बैठते हैं तो वो एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है, अर्थात हमारे संकल्प कहीं ना कहीं टकराते रहेंगे। बैठे होंगे हम यहां लेकिन मन बुद्धि कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है। ज्ञान तो है लेकिन संसार का ज्ञान है, वो वाला ज्ञान है जो पतन करता है। तो ये जो ज्ञान है एक रोशनी की तरह कार्य करता है, हमें सुजाग करता है, चेत करता है, एकदम अंदर में आत्मा में ऊर्जा भरता है, शक्ति भरता है। मुरली पढ़ना भी योग से कम नहीं है, योग से कम नहीं है मुरली पढ़ना भी। दादियां इतनी बड़ी, कितना दादी ज्ञान की बताते 21 बार मुरली क्यों पढ़ते थे इतनी बड़ी, क्योंकि मन बुद्धि कहीं भटके ना। मुरली में एनर्जी है, शक्ति है, चोप चीनी की तरह बाबा जो कहते हैं खुराक है वो, उससे हमको ज्यादा लगाव चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मुरली से प्यार माना मुरली धर से प्यार। मुरली एक ऐसी लाठी है जो सीधा आपको स्वर्ग में पहुंचा देगी। मुरली अशरीरी बनाने का एक सहज माध्यम है, क्योंकि जब भी हम उसको स्टडी करते हैं तो हमारा ध्यान सब बातों से हट जाता है, उसी मुरली में लगा रहता है। कोई देहधारी भी याद नहीं आएगा उसमें, हमको अपनी देह की शुद्ध बुद्ध भूल जाती है। क्योंकि ज्ञान कहां से आ रहा है? निराकारी दुनिया से। निराकारी दुनिया का ध्यान, ज्ञान हम आत्माओं को भी शरीर से निराकार कर देगा, अशरीरी कर देगा। वो एनर्जी है इसमें, ताकत है, कहां से अवतरित हो रहा है? परम धाम से, शांति धाम से। बुद्धि वहीं जाएगी सारे। अगर मुरली में संसार का ज्ञान भी होता तो सारा ज्ञान उसमें दोष होता है सारा। कौन कौन सा उसमें नुकसान है, डैमेजेस हैं, तो उसको हमको पता है। वहां से फिर वैराग्य के बीज जागृत होते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया सड़ी हुई दुनिया है, तो उसे प्यार होगा पुरानी दुनिया से। हमको क्या वैराग्य के बीज है उस मुरली में, अगर वो बीज हमने वहां से लेकर अपने धरनी पर अंकुरित डाले नहीं तो अंकुरित कहां से होंगे वो। मुरली में साधना है, वैराग्य है, पवित्रता है, हर चीज उसमें समाई है, खजाने हैं, सर्व खजानों से संपन्न है वो मुरली। एक मुरली माना भगवान, तो चार पेज की मुरली उसको मुरली नहीं समझना, सीधा भगवान ही समझ लेना हो, क्योंकि बाबा तो चले गए, बाकी हमारे सामने क्या है, वो ही मुरली है। और आने वाले समय में ऐसा भी होगा मुरली भी नहीं मिलेगी, समय तो ऐसा भी आने वाला है, देख रहे हैं संसार में सबने अभी तो उसका एक्सपीरियंस ही कर लिया, अनुभव तो किया, महसूस तो किया सभी ने, जब लॉकडाउन लग गया क्या हुआ। और आने वाले टाइम में कुछ कहा नहीं जा सकता, कब भी कुछ भी हो सकता है। पिछले बार 23 तारीख की मुरली में था, अव्यक्त वाणी में, शरीर का कोई भरोसा नहीं है, समय का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो मुरली का ज्ञान हमारी बुद्धि में इतना होना चाहिए कि हम कहीं भी चले जाएं, भले हमारे पास मुरली हो, मोबाइल हो, ना हो, कुछ हो, लेकिन ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान टपकता रहना चाहिए बुद्धि में। देखना है कि सवेरे जो कलश हमने धारण किया था उस कलश में कितने रत्न हैं, कहीं अपहरण तो नहीं हो गए, कहीं वो किसी ने निकाल तो नहीं लिए, फिर शाम को देखा कलश खाली है या कलश है ही नहीं ऊपर। तो देखना है उस कलश में हमने कितने ज्ञान रत्न भरे हैं, क्योंकि इस कलश के अंदर ना बहुत कुछ भरा हुआ पहले का भी, और उसको हम निकालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय के हमारे संस्कार हैं, वो आदत पड़ी है और आदतों से छूटना मुश्किल है। इसलिए जगदीश भाई जी कहते थे ना, छोटे छोटे धागों का रस्सा बना उसका टूटना मुश्किल, आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। तुमको नई आदतों का निर्माण करना है, मुरली को अलग अलग तरीके से पढ़ना है, अलग अलग तरीके से देखना है उसको। कोई एग्जाम्पल मेथड हो सकता है, कौन कौन से उसमें पात्र हैं, कौन सा समय है, कौन सी परिस्थितियां चल रही हैं, है ना। अभी जैसे हम यहीं बैठे हैं, अभी यहीं बैठे बैठे टाइम ट्रैवलिंग करेंगे, कल शाम को हमने मुरली सुनी थी, सभी वहां चले जाओ, कहां सुनी थी, ओम शांति भवन। ये टाइम ट्रैवलिंग का अभ्यास भी मन को एकाग्र कर देता है। क्या सुना, कहां बैठे थे, सभी अपने अपने को मर्ज को, कौन सी चेयर पर बैठे थे, कितने बजे बैठे थे, मुरली कितने बजे स्टार्ट हुई थी, कितने बजे हुई थी, 6:30 बजे, कितना समय बाबा ने दृष्टि दी, वो सभी मर्ज करो। ये टाइम ट्रैवलिंग है, ये मन को भागने नहीं देगा कहीं, मन को वही सुख फील होगा जो हमने उस समय किया था। कौन से महावाक्य शुरू थे, स्टार्टिंग कहां से हुई थी, आज क्या, आज मंगलवार है क्या था आज, क्या है, हाँ आज सर्प जानों के मालिक क्या कर रहे हैं, सर्प जानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं, तो क्या क्या देखा, बाबा को देख के बाबा के मन में क्या हुआ, बाबा के मन में लड्डू फूटे एकदम, मेरे बच्चे बाबा सामने बैठे हुए हैं, ये बेचारे भटक गए थे, तड़फ रहे थे, धक्के खा रहे थे, कहां पड़े थे गंध में, अब ये मेरे सामने आ गए। तो बाबा के भाव कितने ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि उसको अपने बच्चे मिल गए इतने सालों के बाद। फिर बाबा ने क्या देखा, मिलने के बाद बच्चों के चेहरे पर भी चमक आ गई, चमक में चमक, भरपूरता की चमक, ये चमक सदा चमकती रहे, ये यहां वहां तक ही नहीं रहे, वो चमक सदा रहे, कायम रहे। तो टाइम ट्रैवलर हम जाते ना, तो पूरा मन बुद्धि वहीं का ग्रो जाता है, और वही फीलिंग होगी जैसे बाबा बिल्कुल सामने है। जैसे हम किसी स्वप्न में कोई जागते जागते सोचते रहते किसी के बारे में, ऐसे सोचना। योग क्या चीज है? योग ऐसा नहीं कि सीधा परमधाम ही पहुंच जाए, उसके बीच में बहुत सारी बातें हैं। परमधाम को नीचे लेके आ जाओ, जरूरी नहीं हमको ऊपर ही पहुंच जाना उसको नहीं, क्योंकि सारा खेल मर्ज और इमर्ज का है। तो यही हमको परमधाम की अनुभूति कर लेनी है। तो बाबा ने कल क्या क्या बोला मुरली में, अभी आप सुनाओ। अभी बहुत सारी बातें हैं, खुश रहना है, खुश रहना है। तो ये तो बाबा बोल के तो चले गए, लेकिन रहना किसको है? तो कैसे रहना है? बा बच्चे बा बा बोला था। हाँ, और हाँ, कोई भी बात आ जाए लेकिन खुशी गायब ना हो। लेकिन प्रश्न ये है, खुशी आए कैसे? वो तो बाबा बोल के चले गए खुशी बांटने से, लेकिन पहले खुशी तो है ही नहीं, बांटेंगे कहाँ से? खजानों को स्मृति में रखने। हाँ, पहली बात है खजानों को स्मृति में रखना, क्या क्या हमको खजाने मिले हैं उसका चिंतन करना है। ज्ञान योग धारणा, समय संकल्प श्वास, पवित्रता, सुख शांति, दुआएं खजाना है, संतुष्टता खजाना है, खुशी का खजाना है, पवित्रता खजाना है, ऐसे 100 खजानों की लिस्ट बनाने की। और जो पहले भी खुद भी अगर पहले भी लिस्ट बनाई है उसको नहीं देखने का, नई लिस्ट बनानी है। जैसे संडे की मुरली में था, बाबा ने कहा था एक शब्द बहुत प्रिय है, एक वर्ता, एक आग्रता, एक आंत चेत, एक रस, एक मत, एक धर्म, एक राज्य, एक बल, एक भरोसा, कितने सारे हैं। तो हमने वो पहले बनाई थी लिस्ट, लेकिन परसों द्वारा फिर से बनाई थी, वो पिछली वाली नहीं देखी, नहीं तो क्या था, बना बनाया माल है हमारे पास, उसका कोई फायदा नहीं है, वो तो बीती सो बीती, उस बीती का भी चिंतन नहीं करना। हमको नया माल तैयार करना है, क्योंकि उस समय कुछ और था, अभी कुछ बाबा और टचिंग कराएगा। तो खुशी कैसे रहेगी? एक तो है सर्व खजानों को हम स्मृति में रखेंगे तो, और खुशी कैसे रहेगी? व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। ज्ञान का दान, व्यर्थ क्या चीज है? पहले व्यर्थ क्या है वो देखना पड़ेगा। जो समर्थ नहीं है वो व्यर्थ है, और जो व्यर्थ है, व्यर्थ नहीं वो समर्थ है। हाँ जी, हाँ, लेकिन खुशी बांटते हैं तो वो घटती नहीं, वो बढ़ती है। आबाद रहो, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी कमाल नहीं है। और नहीं, खुशी के स्रोत ढूंढिए, कोई 15-20 ठोस स्रोत होने चाहिए। एक जैसे भाई जी ने बताया, एक तो सर्प जानों की समृद्धि है, प्राप्तियों की समृद्धि है, दूसरा खुशी का है सोमान का अभ्यास, सोमान। लेकिन हमको वो वाला काम करना है जिसमें थोड़ा दर्द हो अंदर में, एक है सहज काम से, उसका वो है चिंतन। चिंतन नहीं करना चाहते हम, दूर हटते हैं, पीछे हटते हैं। अपने को काम देना, एक घंटा बैठ जाओ, कुछ ना कुछ तो लिखो, दो लाइनें लिखते हैं फिर मन भागता है इधर, छोड़ो चक्कर को, बाबा को याद तो करना है, मैं आत्मा हूं, बाबा के पास चले जाओ परम धाम में, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, बस बात ही तो ज्ञान का सार है। लेकिन बदलाव इसमें ताकत नहीं आती इतनी, आत्मा हूं लेकिन कौन सी आत्मा हूं, उसको बार बार स्मृति में रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं सचमुच आत्मा हूं तो क्या मैं वो फील कर रहा हूं? कई बार तो योग में केवल एक ही अभ्यास में बैठ जाना कि मैं आत्मा हूं, बस परमात्मा के बारे में सोचना ही नहीं है, वो अपने आप स्मृति में आएगा। क्योंकि जब हमारी फ्रिक्वेंसी मैच होने लगेगी तो वो अपने आप उधर की तरफ आकर्षित होगा। हमारी फ्रिक्वेंसी तो बॉडी की तरफ ही रहती है, सोचते रहते हैं उसके बारे में, तो हमको यही देखते रहना, केवल मैं अंदर में हूं, चमक रहा हूं या नहीं चमक रहा हूं, कितनी काले के ऊपर है, कितने उसके ऊपर खाद अभी भी है, कितनी मैल है अभी भी, क्यों नहीं चमक बढ़ रही है, उसी के बारे में सोचते रहना है। आखिर में आई कहां से, कौन कौन से संस्कार मेरे अंदर हैं, कौन कौन सा बदलाव हुआ है, क्या बदलाव होना चाहिए, किस गति से होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, कौन कौन से बैरियर है अभी भी, क्या मैं उल्लंघन कर रहा हूं, और वो हमको ही पता है। तो अपना सूक्ष्म रूप से हमको अपनी जांच करनी है। जब तक हम स्वयं की जांच नहीं करेंगे तब तक हमारे कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, और काम बहुत भारी है। दुनिया को बदलना तो बाद की बात है, स्वयं को बदलना भारी पड़ रहा है। सारा काम स्वयं को, स्वयं बदल जाएंगे ना संसार तो अपने आप बदल जाएगा। वो तो वास्तव में ऊपर वाले का काम है, वो तो हमको बिजी रखने के लिए है। संपूर्ण निर्विकारी हमको स्वयं को बनाना है, बाकी तो बाबा चुटकी से सारा काम कर देगा। सुप्रीम सोल है वो, तो जब वो समय आएगा तो सेकंड में सारा काम हो जाएगा। दिखाया ना कृष्ण के अर्जुन और संवाद के, अर्जुन कहता था सारा काम तो मैं कर रहा हूं, वो तो बाद में पता चला किसका चक्कर काम कर रहा था। तो ऐसे हम सोचेंगे हम इतनी सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाद में पता चलेगा कुछ किया ही नहीं, हो तो हमने अपने ही कल्याण नहीं किया, अपने पर ही हम नहीं किया, तो स्वयं पर हम करना है। तो ऐसे ठोस खुशी के कुछ स्रोत ढूंढने चाहिए। जैसे बाबा ने बताया कल मधुवन सोन्नति का साधन है, तो इस पर हमको चिंतन करना है कैसे मधुवन सोन्नति का साधन है। इस विषय को लेकर जितने दिन हम यहां हैं भट्ठी में, 3-4 दिन जितने भी हैं, तो इस पर चिंतन करने गए थे। कौन कौन से साधन है यहां? चार धाम। तो चार धाम हम केवल ये नहीं कि वहां परिक्रमा लगा ली, केवल इतना ही अर्घ दी कि बाबा की कुटिया में बैठे, उदासी खत्म हो गई, इससे कुछ नहीं होने वाले सोचने से। उसके बारे में सोचना पड़ेगा। झोपड़ी पर निबंध लिखिए, ऐसे लिखिए ये झोपड़ी 1950 में कैसी होगी, 1952 में लगभग यहां तो कैसी होगी, हिसाब लगाइए। उसे त्याग जागृत होगा, अंदर में लगेगा बाबा किस दशा में उसमें उस झोपड़ी में रहते थे, वो खजूर के पत्ते कैसी झोपड़ी होगी। सुप्रीम अथॉरिटी, सृष्टि का आदि पिता, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा उस झोपड़ी में बैठा हुआ, जिसको पूरी सृष्टि का निर्माण करना है, उसने हमको चयन किया है। तो वहां जाके उदासी ऐसे थोड़ी नहीं खत्म हो जाएगी कहने से मेरी उदासी खत्म होगी, वहां चिंतन करना पड़ेगा। उसको स्पर्श करो जाके झोपड़ी को, अभी वो वाइब्रेशन है, वहां बैठ के देखो अच्छी तरह से, वहां बैठ के बाबा की कैसी मानसिकता थी, बच्चों को परिवर्तन करने के अंदर में क्या क्या संकल्प चलते होंगे। नींद फिट जाती थी बाबा कहते मेरी, तो हमको देखना पड़ेगा। बाबा के कमरे में जाओ, वो खटिया एक ही खटिया, वो छोटा तो बाबा कमरा भी बड़ा है, पहले तो छोटा सा होता था। तो जहां इतने ब्रह्मा वत्सों ने मिलन मनाया बाबा के साथ, वो ब्रह्मा बाबा की जो कमरा जहां बाबा ने सारी शक्तियां दादी को बिल की, महसूस करना है कि बाबा ने मेरा हाथ वहां पकड़ा हुआ है। कल बताया ना, बाप बच्चों को बधाई देते हैं, मुबारक देते हैं भरपूरता की, खजानों की, महसूस करना है कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और बधाई दे रहा है कि शाबाश बच्चे, तुम समय वेस्ट नहीं कर रहा है। वो देखना है अपने को, फिर हमको शर्म भी आएगी, समय तुम वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन पॉजिटिव सोचना, हमको समय तो वेस्ट किया ये तो हमको पता है, लेकिन पॉजिटिव सोचना, वहां हमको रियलाइजेशन होगा, फिर महसूस करना वो जाके। वहां हिस्ट्री आल में चले जाओ, देखिए वहां किस किस के चित्र लगे, वो कितनी फोटो लगी हो, गिनती करो वहां मेडिटेशन हॉल में कितनी फोटो लगी, क्या क्या लिखा है इधर सारा देखो। वहां हिस्ट्री हॉल में कौन कौन सी दादियों की फोटो लगी है, वहां बाहर 21 दादियों की फोटो लगी है, 21 पूर्वजों की, वो सबको देखो उनके जीवन चरित्र। हाँ, अंदर में 45, बाहर में 21, बाहर वाले गिनती करके बाहर। हाँ, तो वो जो बाहर है 21 दादियों के फोटो लगे हुए हैं, मम्मा का फोटो लगा पहला, दूसरा किसका है, जान की दादी, तीसरा गुलजार दादी, चौथा प्रकाश मणि दादी, पांचवा निर्मल शांता, छठा ब्रजेंद्र दादी, सातवां चंद्रमणि दादी, आठवां रतनमणि दादी, नौवां मनोहर दादी, दसवां शांतामणि दादी, ग्यारहवां हृदय पुष्पा दादी, बारहवां गंगे दादी, तेरहवां पुष्प शांता दादी, ईशु दादी, चौदहवां पुष्प शांता दादी, पंद्रहवां संतरी दादी, फिर सोलहवां शैलेन्द्र दादी, उसके बाद ऑलराउंडर दादी, फिर ध्यानी दादी, संदेशी दादी, कुंज दादी, कितने सारे फोटो। एक खाली हम उनके चेहरे नहीं याद करें, उनके चरित्र हमारे अंदर में आ रहे हैं, क्योंकि सामान्य आत्मा तो नहीं है, पूरी जिंदगी उन्होंने बलिहार कर दी भगवान के ऊपर, कितना त्याग तपस्या उनके जीवन में समाया हुआ था, वो सारा हमारे अंदर समाने लगेगा। हम क्यों बाप बड़ों को कहते हैं हमारे ऊपर हाथ रख दो, क्या औचित्य उसका, क्या अर्थ है उसका? क्योंकि वाइब्रेशन हमारे पास में है। दादियां आती थी, दादियों के पास क्यों वहां आकर्षित होते चले जाती थी? क्योंकि कूट कूट के बाबा का ज्ञान उनके अंदर भरा हुआ है। तो एक ये तो खेल पाल है, मन बुद्धि को बिजी रखने के साधन है, लेकिन अपने संस्कारों को बदलने के लिए या मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, अपने को बिजी रखने के लिए, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ तो हमको नया प्लानिंग करना पड़ेगा। बिना नवीनता के हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी। उसी तरीके से मुरली सुनेंगे बोर हो जाएंगे। बड़े दादी को हमने देखा है, बड़े दादी जी कभी ओम शांति उन बगीचे, ओम शांति उनके अंदर में, तो कभी बगीचे में मुरली क्लास पढ़ते थे, ओम शांति उनके बाहर, कभी बाल उद्यान में मुरली पढ़ेंगे। और दादी को हम देखते थे 85 में उन्होंने शरीर छोड़ा, 85 एज में, 87 85, तो 82 की एज में भी दादी टांग पर टांग चढ़ा के बैठती थी बिना इसके टेके के, क्योंकि इस ऊपर पहले बड़ी संदली होती थी ओम शांति उनमें, और हम नीचे बैठे तो हमको कहती टांग पर टांग बैठ के चढ़ो, ऐसे चढ़ा के बैठो, अलर्ट रखते थे वो, है ना। दीदी मनमोहनी दीदी सुनते हैं उनके बारे में, कमरों में जाके देखती थी कौन कौन मुरली में नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या कारण है उसका, कारण बताओ, नोटिस जारी किया जाता था, भेजा जाता था किसी को, क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कितना बुखार आ गया। जगदीश भाई जी, उनके दिल में तो ऐसे लगता था, ऐसे बोल निकलते थे कि दिल को घायल कर देते थे एकदम। वो तो इतना लास्ट में 2001 में शरीर छोड़ने के पहले जो ओम शांति में उनकी क्लास हुई तो सुनते थे, जब कोई नहीं दिखता था बोलते थे दिल करता मैं जाके कमरों में देखूं कि 104 बुखार किसको चढ़ा हुआ है, तो दिल पिघल जाता था एकदम, वो था अपनापन। क्योंकि दिल को तीर चाहिए, स्नेह वाला काम चला गया, अभी चूबने वाला चाहिए कुछ, स्नेह 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 से हम ठंडे हो गए। बाबा ने कहा जम घटो की फांसी से, धर्मराज सामने खड़ा अभी, और अंतिम रूप वही है उसका, तो हमें स्वयं का भी धर्मराज बनना है। तो ये थोड़ा हम साइड में चले गए। और मुरली में क्या क्या था, बीती सो बीती, क्यों हम बीती को बीती नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात हमने कुछ नई बातें बुद्धि में नहीं रखी हैं, इसलिए बताया ना टाइम ट्रेवल है ना। तो अपनी बुद्धि को बीती जो बीती बातें हैं वो क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि हमने नई बातें उसमें रिकॉर्डिंग नहीं की हैं, कुछ हमने मनन चिंतन नहीं किया है, है? जैसे बताया स्त्रीकाल के बाद पहुंचे अभी शांति स्तंभ में चले जाओ, अब शांति स्तंभ में 18 शिक्षाएं लिखी हुई हैं, पढ़ो वहां क्या क्या है, याद है किसी को 18 की 18? यही तो मधुबन सोनती का साधन है वो करने का। यहां तो सोनते का इतना साधन है, हम कई दफा सोचते हैं कि सारा कुछ लिखेगा, लेकिन फिर भी इतना पूरा होता ही नहीं, इतना हो मधुबन में खाली जितना दीवारों पर लिखा है इतना भी याद हो जाए हो सौभाग्य। मधुबन के जर्रे जर्रे में परमात्म प्योरिटी के वाइब्रेशन समाये हुए हैं। मधुबन जैसे संसार डिटैच कर देता है, क्यों संसार की विस्मृति हो जाती है यहां पर, सृष्टि का आदि पिता यहां तपस्या, घनघोर तपस्या की, यह साधारण तपस्या नहीं है। बुद्धादियां देखते थे मांगन में बैठे रहते थे, उनके बैठने मात्र से ही वाइब्रेशन ही कुछ अलग होते थे। वो तो सारा काम किसको करना है, एक केवल हमको वर्णन तक सीमित नहीं रखना कि दादी ऐसे थे मम्मा ऐसी थी, लेकिन उसका क्या, हमने क्या किया, केवल उस स्मृति दिवस पर आकर उनकी शिक्षाओं को केवल सुनाने तक सीमित न रहें, हमें स्वयं में उनको आत्मसात करना है, तो उनका हमें कोई फायदा है, नहीं तो फायदा कुछ भी नहीं है। हर साल उनकी स्मृतियां मनाते हैं, कितने सालों से मनाते आ रहे हैं, ब्रह्मा के कदमों पर कदम चलना चाहिए, हमारे जीवन में बदलाव कहां आ रहा है, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ गहराई से हमको सोचना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप से क्रोध करना पड़ेगा, एकदम अपने आप से संग्राम करना पड़ेगा, लोहा लेना पड़ेगा अपने आप से ही, क्योंकि दूसरा कुछ करने वाला नहीं, अगर कोई करेगा भी नहीं तो उसको हम 10 बातें सुना देते कि पहले तुम अपना ही देख ले, क्योंकि उसमें ऐसा किसी को कुछ कह नहीं सकते इसमें ऐसा अभी, तो स्वयं को हमको जागृत करना, जागते रहो जागते रहो जागते रहो जागते रहो, तो कुछ बदलाव होगा, तो हमारी उन्नति होगी, तो फीलिंग होगी कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रुक नहीं जाना है, पता नहीं कितना आगे रास्ता तय और है। तो प्रॉमिस करना है, कौन सा प्रॉमिस करना है, बाबा ने कल मुरली में कहा खुश रहना है और खुशी बांटनी है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, तो खुशी के हमको स्रोत ढूंढने हैं, है ना, ऐसे 21 स्रोत 21 बातें ढूंढो, कौन कौन सी बातों से खुशी हो सकती है। मनन चिंतन करने से होती है, या जो बाबा से हम मिलन में आए उससे हो सकती है, ज्ञान बाबा का परिचय देने से हो सकती है, कुछ लिखें उससे हो सकती है, आपस में परिचर्चा उससे हो सकती है, योग के छोटे छोटे अभ्यास करें उससे हो सकती है, सोमान में रहें सोमान लिखें, जैसे हमको बता दिया जाए अभी बैठे बैठे 101 सोमान लिखो तो हमारी बुद्धि में होने चाहिए वो। ऐसा नहीं कि वो लिस्ट भेज दो जी व्हाट्सएप में चला जाए 101 सोमान की लिस्ट और वो इनके वहीं पड़ी रहती है। मांगना नहीं है, ज्ञान भी मांगना नहीं किसी से भी, सब कुछ दे दिया उसने, सबके पास में ही है। हाँ, अपने प्रोग्रेस करने के लिए हमको एग्जाम्पल मिल जाए, लेकिन तैयार तो अपना हलवाई करना पड़ेगा। अपनी सब्जी जैसी मर्जी बनाई लेकिन वो स्वाद लगती है, दूसरे जितनी मर्जी सोई लेकिन कोई ना कोई नुकसान तो हम निकाल ही देते हैं। इसलिए हमको स्वयं को तैयार करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। वरिष्ठ भाई ने वो इतने लंबे समय से उनकी क्लासों में क्यों इतना ताकत है, क्यों शक्ति है, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट किया उन्होंने। आज भी हम सूरज भाई को देखते हैं डायरी के अभी भी बैठे होते हैं बाबा वाले दिन में, अभी भी उनको भी क्या जरूरत है बताओ, लेकिन वो संस्कार पड़े हुए हैं, ऐसे थोड़ी वाणी में जोर भर जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने गोर तो नशा चढ़े, तो नशा है जो ना ज्ञान का नशा, बार बार पीते रहना बार बार पीते रहना बिना पानी की, बिना पानी के माना दूसरा मिक्स नहीं करना कुछ भी, नशा उतरता है फिर पियो, उतरता है फिर पियो, कदम थोड़ा लड़खड़ाने चाहिए, बुद्धि रूपी कदम, माना बुद्धि में नशा एक कपारी खुशी, बाबा जो कहते कपारी खुशी, तो अंदर में ज्ञान का कुछ ना कुछ तो चिंतन चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, तो हमारी थोड़ी प्रोग्रेस होगी। क्योंकि समय ऐसा रहा है कि हमारे अपने ही ऐसे कई जन्मों के ऐसे पाप कर्म जो हमारे सामने अभी भी नहीं आए हैं, हो सकता है पता नहीं कौन से मोड़ पर इतने भारी आ पड़ेंगे, जो भारी पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे उस समय। बाबा ने बोला ना पापों का बोझा बहुत है सिर पर, और उसकी निशानी है कि हम निर्बंधन हैं, हमको टाइम भी है सब जगह से, ज्ञान युग के लिए भी टाइम है, कहीं से कोई समस्या भी नहीं है, और हम मेडिटेशन में बैठे हैं, नींद आ रही है, अर्थात पापों का बोझा सिर पर है। तुमको अटेंशन रखना बहुत गहराई से, और उसमें और बहुत सारी चीजें हैं, नींद आने के और भी कई कारण हैं, दवाइयां भी हो सकती हैं, और दवाइयां क्यों खा रहे हैं उनके भी कारण है। तुमको अपनी बॉडी की तरफ भी पूरा ध्यान देना, हेल्दी रखना है, तो वो तो अलग विषय, भोजन से संबंधित वो वाली चीजें शरीर में नहीं डालनी है जो उत्तेजित करे शरीर को, क्योंकि शरीर भी पवित्र है, भगवान की अमानत है, ये आंखें भगवान की अमानत है, इन आंखों में भगवान की दृष्टि बसी हुई है, इस बुद्धि में भगवान का ज्ञान है, इन हाथों में भगवान की प्यार की वाइब्रेशन है, उसकी शक्तियां इसमें समाई हुई हैं, इसके अंदर उसकी इस शरीर की रग रग में नस नस में उसकी शक्तियां समाई हुई हैं, तो हमारा किस कार्य में लगना चाहिए बताया ना, बाप समान कर्तव्य क्या है टीचर्स का, तो वो हम उस कर्तव्य में कर रहे हैं, उस कर्तव्य में अग्रसर हैं, उसमें बिजी हैं, वो हमको देखना है। और क्या स्लोगन कौन सा बताया बाबा ने, बोला एक स्लोगन पक्का लगा दो मस्तक पर, वो स्लोगन है जो प्रॉमिस है उसी को स्लोगन बता दिया, खुश रहना है और खुश करना है। एक संकल्प, बाप दादा को यही संकल्प आता है क्या, इस बात में एवरेडी हो तो 20 बात में भी एवरेडी हो, कौन सी, हाथ उठाने में एवरेडी है, अब दूसरी बात में भी एवरेडी हो, कौन सी है जी, याद करने में त्याग, कौन सा त्याग है, तो त्याग वाली बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन त्याग किसका, विकारों का और कमजोरियों का त्याग, अपनी कमजोरियों को यही छोड़ के जाते, ये एक ही होमवर्क है, एक लिस्ट बनानी है कि मेरे में कौन कौन सी कमजोरी है, क्योंकि जो कमजोरी को हम स्वयं जानते हैं दूसरों भले बताते रहेंगे, दूसरे भी हमारी बहुत कमजोरियां निकालते रहते हैं, निकालनी भी चाहिए वो, लेकिन जो कमजोरी हमको मालूम है वो तो उनको भी नहीं पता है, जब उनको पता चलेगा तो वो तो बोलेंगे तो और ही खतरनाक है, हम तो कम ही समझा हुआ था अब पता चला कि इसके मन में क्या क्या चलता रहता है ना। बाबा माना अगर हमारे अभी दिमाग को खोल के देखा जाए अंदर में क्या क्या भरा पड़ा है तो पता चलेगा यार ये तो बहुत खौफनाक आदमी है, इसके जैसा तो कोई है नहीं है, बाहर से तो बड़ा चिकने चुपड़े लगते हैं लेकिन अंदर से कितना खतरनाक है। तो हमको स्वयं की जांच देखनी है, अपनी कमजोरियों की लिस्ट बनानी है और यही जला के जानी है। मधुबन जैसा स्थान कहीं नहीं मिलेगा। और ये बाबा ने कहा कल की मुरली में था, लास्ट लाइन में, यहां फुर्सत मिलती है तो क्या करना चाहिए बच्चों को, विचार सागर मंथन यहां अच्छा हो सकता है मधुबन में। और जो यहां आदत डालेंगे ना वही घर में पड़ जाएगी आदत, नहीं आदत तो जो हम यहां आदत डाल रहे हैं उसी आदत को वहां कायम रखना है। लेकिन स्मृति में जो बाबा ने कहा इमर्ज करो रात को और सवेरे उठते याद करो कोई है इमर्ज या मर्ज हो गया, अगर मर्ज हो गया तो कोई टेंशन नहीं लेनी उसकी, फिर से इमर्ज कर देना, फिर से मंगलसार से तैयार हो जाने का। अगर हम कभी असफल भी होते हैं ना तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, नहीं तो टेंशन में और ही हम कमजोर हो जाते हैं। जो बीत गया सो बीत गया, उसको क्या कर सकते हैं अभी, अगर गुस्सा हो ही गया अब कर भी क्या सकते हैं, बाद में कुछ नहीं कर सकते ना, उसको छोड़ दे देगा, काम खत्म हो गया, और ही खुश होना के जो होना था वो हो गया, गुस्सा खत्म हो गया और ही बोझ हल्का हो गया अभी, तो उसमें हमको टेंशन नहीं लेनी है। और सेवा की तैयारी, कौन सी सेवा, संसार में टेंशन बहुत बढ़ने वाला है तो उस टेंशन से आत्मा को मुक्त करने के लिए स्वयं को हर प्रकार की टेंशन से मुक्त करना है। ब्राह्मणों को भी बहुत टेंशन होता है, पुरुषार्थ का भी बहुत टेंशन है, क्योंकि हम पुरुषार्थ का टेंशन, योग लगाने का टेंशन होता है। उनकी अच्छी होगी, उनको टेंशन कम है। सवेरे रात को हम चर्चा कर रहे थे, बोला कई बार तो इसीलिए चिंता होती है कि हमको चिंता क्यों नहीं है, तो वहां हमके हमें घर में भी पहले तो गृहस्थ को गृहस्थ समझना ही नहीं है, थोड़ा भी वहां चेंज करना, अपने विचारों को चेंज करना है। जो बाबा कहते हैं ट्रस्टी हैं या सेवा केंद्र है वो, है ना, जैसे यहां भी है अब मधुबन में, भले हम यहां घर में नहीं रहते लेकिन गृहस्थी तो हैं, ये भी एक हिसाब से यहां तो बहुत बड़ा परिवार है, यहां तो कितने भाई बहने रहते हैं, स्वभाव संस्कार सबके अलग अलग हैं। अच्छा सेवा ही करनी पड़ती है, अच्छा घर में क्या करते हैं, वहां नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, काम तो वही है, यहां सेवा कर रहे हैं, तो वहां अपने मन को, मन के संकल्पों को चेंज करना है कि ये मुझे सेवा के लिए मिला हुआ है, अमानत है भगवान, ये परिवार भगवान की अमानत है, ये हमारे बच्चे नहीं है, तो हम उससे हमारा मोह नष्ट होता जाएगा और जो उनके प्रति जो हमारी ऊंचा दृष्टिकोण आरंभ हो जाएगा तो उनके अंदर भी प्योरिटी के वाइब्रेशन, शक्तियों के वाइब्रेशन, परमात्मा प्यार के वाइब्रेशन भरते जाएंगे। घर को तो घर समझना नहीं है, अब घर तो रहा ही नहीं हम इस संसार में, बाबा ने कहा तो हम टेम्परेरी है, इधर घर तो हमारा असली ऊपर ही है, आज ही था, आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, संसार में शांति मांगते हैं लेकिन वो स्मृति भूल जाते हैं, तो शांति मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप में स्थिरता आ जाएगी। तो घर को गृह समझने नहीं आज से, कैंसल, क्या समझेंगे, मधुबन है ये, घर के जितने भी कमरे हैं नाम चेंज कर देना उनका, ये शांति धाम है, ये तपस्या धाम है, ये किचन वाला दूसरा है, ये सुख धाम है, वहां से भोजन मिलता है ना, है ना, माता जी पकारे, लक्ष्मी जी रोटी पकारे, चेंज कर देना, बोलना नहीं किसी को, मन ही मन करना, तो चेंज कर देना सारा मधुबन घर को, तो घर समझना नहीं अभी, चेंज कर देना वो। और ज्यादातर अगर वो समझो कोई ज्ञान में इतने नहीं भी चलते हैं तो थोड़ा बांस में कम बिताओ, थोड़ा बाहर निकल के वाइब्रेशन दे रहे उनको, धीरे धीरे बदलेंगे। और बाबा ने बोला आखिर हट्टी तो एक ही है, जाना कहां उनको, इतना तो पता ही है ना सबको, हट्टी तो एक ही है, कहां जाएंगे आखिर। और वैसे भी देखा जाए लंबे समय से संसार के जितने भी संस्थाएं या जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं सबका ध्यान किधर जा रहा है अभी, ब्रह्मा कुमारी की तरफ जा रहा है। भले कुछ उल्टी सुलटी बातें भी सुनने में आती है लेकिन फिर भी जाता अंत में ब्रह्मा कुमारी की तरफ ही है, क्योंकि पता होता है बड़ी संस्था है तो बड़े परिवार में कुछ होता भी रहता है, कोई बड़ी बातें नहीं है, है जी, हाँ खींच रहे हैं अभी, और खींचेंगे, आप तैयार हो जाओ अभी, और खींचेंगे अभी, तो एक एक बच्चा चुंबक है, शक्तिशाली चुंबक बनेगा, रूहानियत पर चुंबक है जी, म्यूजियम है, चलता फिरता म्यूजियम है, चलती फिरती प्रयोगशाला है, चलती फिरती लाइब्रेरी है, एक एक बच्चा चलता फिरता क्या है, और लाइट हाउस, माइट हाउस है, मास्टर गॉड, हाँ एक मुरली में है तुम मास्टर भगवान हो, है ना। एक बार यही क्लास चल रही थी मुरली मधुबन निवासियों की, तो रतन दादी जी क्लास करा रहे थे, तो पूछा गया कि बाबा ने मुरली में सबसे बड़ा टाइटल कौन सा दिया हुआ है, तो बताया मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन सबसे बड़ा टाइटल दिया मास्टर परमात्मा, तो कोई मानने को तैयार ही नहीं हुआ, हम दो चार लोगों ने बोला, फिर उन मुरली की डेट दिखाई, तो माना हम वो बुद्धि में वो मुरली की बातें स्मृति में नहीं रहती हैं, दूसरी दूसरी बातें रहेंगी, मास्टर परमात्मा, बाबा ने कहा तुम बच्चे मास्टर परमात्मा हो, तो थोड़ी देर ऊपर बैठ जाना परमात्मा के पास ही, थोड़ा सा बाजू में, बाबा से थोड़ा सा खिसका देने का उधर, और पास में बैठ जाने का उधर, देखना उधर कैसे वो साक्षी होकर देख रहा है संसार को, कोई लेपशेप नहीं है उसके ऊपर, हमको भी वही अवस्था अचीव करनी है। तो वहां बैठने, उसके पास में बैठना, उसको थोड़ा पकड़ना, स्पर्श करना है, बाबा इस बिंदु बिंदु कैसा कैसा लग रहा है, स्पर्श करना, उसको पकड़ना, थोड़ा पकड़ के ले आना ऊपर से नीचे, है ना, थोड़ा दिल में समा देना उसको, आंखों में समा देना, थोड़ा मुख में, मुख में जैसे कृष्ण क्या गोला दिखता था ना, तो बाबा को थोड़ा मुख में रख लो, क्या फर्क पड़ता है, उसको चूसते रहो, एकदम मीठा मीठा लगेगा, मीठे बन जाएंगे, है जी, हाँ खा जाओगी, तो हम तो केवल चूस ही रहे, खा तो नहीं रहे हम तो केवल चूस ही रहे उसको। तो ऐसे रमणीक ज्ञान है, लेकिन इसको रमणीक बनाना पड़ेगा तो जीवन में मजा आएगा। फिर भी करते 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 फिर उदासी आ सकती है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लंबे इसमें से हिसाब था, पता नहीं कब किस मोड़ पर सामने आ जाए, है जी, 63 जन्मों का है, 63 जन्मों का है। तो ऐसे ज्ञान सी बहुत सारी बातें हैं, हाँ जी बिल्कुल, सारे टाइटल उसने हमारे में पहना दिए, लास्ट में माला पहना है ना बाबा ने याद प्यार में, तो माला पहन के रखनी है हमको, बाबा कहते तुम बच्चे मेरे सिर के ताज हो, नैने के नैनों के नूर हो, है ना, दिल तक तनशीन हो, तो ये सारे टाइटल हैं जो हमको इस संसार से विरक्त कर देते हैं, इस संसार से बैराग दिलाते हैं, बाबा के नजदीक लेके जाते हैं, शक्ति बढ़ती आत्मा में, आत्म एकाग्रता बढ़ जाती है, जीवन में खुशी बढ़ जाती है, तो ऐसे निर्विघ्न हो जाता हमारे जीवन। टीचर के साथ मुलाकात, निर्विघ्न, क्या ड्यूटी है, निर्विघ्न बनाना, ऐसा सर्टिफिकेट अभी तक किसी ने दिया नहीं, पहले बाबा ने बहुत सारी महिमा कर दी, लेकिन बाबा ने कहा ये भी अभी बाप दादा की चाहना पूरी करो, निर्विघ्न। तो हमारे जीवन में कौन कौन से विघ्न है, या घर परिवार में कौन से विघ्न आ रहे हैं, और घरों में जो हम रहते हैं तो थोड़ा हमको एडजस्ट होकर चलना है, वहां अपना ऐसा नहीं कि हमको ज्यादा दिखाना हम ज्ञानी है, नहीं, बहुत एडजस्ट होकर चलना पड़ता है, उनका भी सुनो, उनके साथ भी समय बिताओ, उनको घुमाओ फिराओ, उनको खिलाओ पिलाओ, थोड़ा उनका सुनेंगे ना धीरे धीरे धीरे, फूक चूहा जैसे बाबा कहते फूक मार मार के खून निकाल देगा, तो हम उनको फूक मार के उनका भी खून निकाल देंगे। जैसे एक बार क्या हुआ कि हमारे पिताजी, वो तो फिर बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो 23 एज थी उसमें, बहुत पहले की बात है, 95 की, तो पिताजी कहते तेरी शादी तो मैं करके छोड़ूंगा, तो मैं बोला आप लिख के ले लो, मैं आपकी शादी करवा दूंगा भगवान से तो पिताजी हमारे पीछे बहुत पड़े रहते थे, हमारे 12 रिश्ते किए उन्होंने, और हम पिताजी के सामने कभी बोलते तक नहीं थे, क्योंकि पुराने जो लोग होते थे वो बहुत खुराफाती भी होते थे, और खुर्रात जिसको कहते हैं, माना संस्कारों के लिए, अच्छे संस्कारों के लिए, अगर स्कूल में मार पड़ी और घर में पता चला तो घर में भी मार पड़ेगी, तो घर में बताने गए नहीं, तो ऐसे उन्होंने 12 रिश्ते किया, और कई जगह मार पिटाई भी कर दी हमारी लड़की वाले को घर में ही लेकिन हमको कोई भी महसूसता नहीं हुई। आखिरकार पिताजी यहीं पहुंच गए, तो मैं बोला हम अभी आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, बदल के नहीं बदल गए, तो जिसका साथी भगवान उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। और जीवन में विघ्न आते ना, मजा आता है उसमें, बिना विघ्न के जीवन जो है ना नीरस लगेगा, विघ्न आने चाहिए, विघ्न आ रहे हैं माने जीवन हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके जीवन में विघ्न नहीं है माने हमारी यात्रा रुकी हुई है, यात्रा मैंने वहीं खत्म कर दी, तो विघ्न तो आने ही चाहिए, विघ्न तो हमारा एक लॉटरी की तरह है जी, उन्नति का साधन है, तोहफा है, वो तो एक गिफ्ट की तरह मिलते हैं, तो विघ्नों को आने देना, खुशी विघ्नों को भी खुशी खुशी पार करने का, विघ्न तो आएंगे क्योंकि हमारे कर्मों का हिसाब था, जो भी कुछ हो वो तो आएगा आएगा ही, या रोक दो के क्रॉस करो, हाँ कुछ करना ही ना वहां, लेकिन वहां का बाबा ने पूरी तरह बताया नहीं अभी तक, बहुत सारे रहस्य बाबा ने छिपाए हुए, वो तो वहां जाके पता चलेगा हाँ बहुत सारे रहस्य अभी रहस्य ही रह जाएंगे, और वो रहस्य ही रहने चाहिए, क्योंकि अगर हमको पता चलेगा तो हम उसी में उलझ जाएंगे, जैसे बोलते हैं कृष्ण का जन्म हो गया, अच्छा हो भी गया तो हम क्या कर लेंगे अभी, कुछ नहीं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम हमारे काम की हैं, जो हमारी उन्नति करती हैं, हमें हमारी प्रोग्रेस ग्रोथ करती हैं, हमारी खुशी का संचार करती हैं, उन बातों को हम पकड़ के आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति।
तुमको जाना है।
खजाना है ओ मेरे नीचे बाबा बस।